अब शिव जी ने सोचा आज तो बात बिगड़ जाएगी, जा इब्बे दो इसको वचन, पार्वती भी के याद रखेगी। मांग भाई क्या मांगता है तू? भस्मासुर बोला कि महाराज जी वचनबद्ध हो जाए, नो ना मांगो। हो गया भाई वचनबद्ध हुआ, मांगो क्या मांगते हो? के भस्म कंडा दे। अब काट के पकड़ा दिया कि वो कर डाइब, अब बचा ले जान बचानी उतना जान तो मारूंगा। क्यों मारूंगा? पार्वती को पत्नी बनाऊंगा और तन्ने खत्म करूंगा। अब गरीबदास जी कहते हैं ऐसे कुटिल जीव घर, ऐसे कृत घनी जीव कलमाही, और माता को तो पत्नी ठहराई। ऐसे नीच भस्मासुर कि अपनी माँ को पत्नी बनाने की खातिर 12 वर्ष तक तप कराया। और भाई भगवान शिव जी ने नोबिना बेरा पिटाई को बद्दी के सोच रहा मन में, ये सर्वशक्तिमान कितना हो गए, मैं ये पूछू तेरे पे। यह बात यहाँ पर आकर जब डंडा लग गया ना तीस तरले भाषण पे, जब बुद्धि कुछ ठिकाना आने लग गया, कहा साची बात तो ये यूं की यूं है, ये भी शास्त्रों में, कोई बाहर से नहीं बोल रहा मैं। तो शिव जी आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे, भस्मा गिरी नाम था उनका, भस्मासुर तो बाद में कहा जब उसने ये जुलम कर दिया। अब बाजा जावे आकाश में उड़ गया, अब सिद्धि तब से सिद्धि भस्मासुर में भी आ गई आकाश मोड़न की। ये तो आम संत में होती है जो आकाश मोड़ सकते हैं। तो उस समय भगवान शिव भागा जा रहे हैं और भस्मासुर भस्म कंडे को लेकर उसके पीछे भाग रहे, और आगे से भगवान विष्णु जी ने पार्वती का रूप बनाकर और शिव जी के उसे भस्मासुर के आगे प्रकट हो गए। अब भस्मासुर तो पार्वती खातिर का पांव पीट रहा था उसको बद के कारण, जब पार्वती को सामने देखा भस्मासुर वहीं डट गया। उसको इतनी ज्ञान था कि जब तक मेरे हाथ में भस्म कंडा है शिव जी तो एक कोष भी 100 कोष भी ना पावे, इतना डरे हुए थे भगवान विष्णु शिव जी और भाग गए थे। अब ठीक है, तो पार्वती कहने लगी उसने भी क्यों मारो हो तुम, मैं तेरे पास आ गई, और ठीक है तू इसीलिए ताप चाह रहे थे। हाँ बिल्कुल ठीक है। कहने लगी कितने कुछ नाचना गाना भी आवा है, कौन निराय मोड़ा है? जो बोला मन्ना ना गाना गुणानता किमी, ने बोली मैं तो राजी होंगी जब तक तो मैं नाच के दिखाऊंगा। अक नाचो क्यों करे, अक मैं सिखाऊं तेरे को, और तू तो पहले डांस सीख, अक अच्छी बात सिखा देता है। भस्मा वह नाच भगवान विष्णु उसमें नाचन लग गया पार्वती रूप में, ये उसने बूचने थोड़ा नाचना था, ने बोला जैसे मैं करूं ऐसे करना तूने, ऐसे नहीं ऐसे कर, अकाश से ले। अब नो करके हाथ ले, सिर पर ले हाथ ने, सिर पर ले आई वो ले आया, ऐसे विष्णु जी ने क्या उसने कर दिया, और विष्णु जी ने कह दिया भस्म, कि वो कंडे आला हाथ सिर पर लिया जब टोक्या वो मर गया जल गया। उस कड़े को उठाकर भगवान विष्णु का रूप बनाकर विष्णु जी शिव जी के सामने प्रकट हो गए जब वो भागे जा रहे थे। ये विष्णु शिव पुराण में लिखा है। आगे जाकर विष्णु जी कहने लगे भाई डट जा, रुक जाओ एक बार महादेव जी। महादेव जी कहते हैं आप भी भागो भगवान, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। क्या हो गया? के भस्मा राक्षस ने मेरे से भस्म कंडा मांग लिया और उसकी नीत में आ गया फर्क, मुझे मारना चाहता है। वो कहने लगा मैं उसे ये भस्म कंडा ले आया, वो तुझे मारा को नहीं, अक नहीं उस राक्षस से कौन ले सकता है भस्म कंडा, उसकी तो बदनीति इतनी थी, मैं नहीं मानू महाराज जी। भगवान आप झूठ बोलते हो। अरे नहीं बोले पुरुष ये भस्म कंडा तो पहचान ले, अकना मैं नहीं मानता इस बात ने। न बोला किसी तरह मानना भी कहा कि मन मेरा यकीन ही नहीं हो रहा कि उससे तो ला कैसे सकते हो। इतने में भगवान विष्णु ने एक लड़की का रूप बनाया, आगे जाके उसका वर्णन भी ना कर सकते यहाँ पर, जो भगवान शिव के लिए बनी इस समाज में बताने जोगी भी कोई ना, जो शिव पुराण में लिख रखी। उस लड़की का पीछा भाग लिया, उसके हाथ पकड़ लिए बदनीत करके, वहां पर फिर भगवान विष्णु का रूप बना लिया विष्णु जी ने, फिर शर्म आ गया। अग भाई न्यो मनो जो कर तू पागल हो गया ना शिव जी, न्यो भस्मासुर पागल हो गया मेरे ऊपर, मैंने रूप बनाया लड़की का पार्वती का, और जिस प्रकार तेरी शुद्ध बुद्ध खोगी इसी प्रकार उस भस्मासुर राक्षस की बुद्धि भ्रष्ट कर दी मैंने और फिर उसको भस्म किया। बोला कांकर राख्या, फिर देखा जब तसल्ली हुई जब उसकी राख दिखा ली, इतना डरा हुआ था भगवान शिव जी और सर्वशक्तिमान। उस सर्वशक्तिमान ने नो को ना बेरा पट्टा गरीबदास जी कहे कि इस राक्षस के मन में क्या है और फिर सर्वशक्तिमान के ऊपर भस्म कंडे क्या असर करे। तो भाई अब इसने सेट करा इतना और ठा ले दूसरी बात ने, अब इन बातों को विचार करना पड़ेगा। कोई बुराई नहीं कर रहे हम, बुराई तो जब हो आम ने हम अमरूद बतावा और अमरूद को कोई आम कह हम आम कह दे अगर अमरूद है आम नहीं है तो उसको बुराई तो वो जानेगा जोने का मेरे आम न बिसराव है, जिसको मालूम कोई ना फल तो है पर आम ना कह भाई इसने अमरूद है आम नहीं है, अर्थात ये भी भगवान है पर भाई पूर्ण नहीं है, ये तीन लोक के। अब हम आपको सृष्टि रचना सुनावे। गरीबदास जी महाराज की एक आरती है, अदली आरती अदल पठाऊं युगन युगन का लेखा लेऊं, जादिन नाथे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन जमी असमाना, कच्छ मच्छ कुरहम नहीं काया, चंद सूरज नहीं दीप बनाया। ये कुछ भी ना थे, ना चांद थे ना सूरज, शेष महेश गणेश ना बर्मा, नारद सारद ना विश्वकर्मा, ये सिद्ध 84 ना 3300, नौ अवतार नहीं 2400, पांच तत्व ना ही गुण तीना, नाद बिंद ना ही गठसीना, ये चित्रगुप्त ना कर्तरंबाजी, धर्म राय ना पंडित काजी। भाई धूं धूं कार अनंत युग बीते, जादिन कागज का उकिन चीते। जादिन फिर कहते हैं जी आप कहाँ थे फिर, यहाँ कुछ भी नहीं था तो आप कहाँ थे। जादिन थे हम तख्त खवासा, तनके पाजी सेवक दासा, संख युगन पर लो परवाना, सतपुरुष के संग रहाना, दास गरीब कबीर का चेहरा, हमारा सतलोक अमरापुर डेरा। हम सतलोक में रहते थे और वहीं पर कबीर भगवान पूर्ण परमात्मा वहां रहते हैं। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रतीन ही भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सरदनहार। अब कबीर साहब को हम सिर्फ एक जुलाहा दृष्टि से देखते हैं, दृष्टिकोण से, इसलिए हम उनसे वैसे ही मन नकारा कर देता है कि वो क्या होगा भगवान होगा तो ताणी तण्या करता, क्या भगवान भाई मुकुट बांध कर और तीर लेकर भगवान बनाया कराए। अगर तीरों से भगवान बनता हो और दुनिया को मार काटने से भगवान ही स्वीकार्य हो तो फिर तो उस भगवान ने भाई, उस भगवान ने तो उड़े बैठे बटनदा बन गया हो सकता है, तीरा गया हो सकता है कोने, वो तो एक मिनट में काम कर दे सबका। तो ये जो इनकी कुछ और पावर है, ये हथियारों वाले भगवान जो हैं, ये पुलिस में एक बात समझ लो SP लेवल के, इनकी कार्य क्षेत्र है कि कोई बकवाद करो न गढ़ दे, उनको दे रखी है ड्यूटी जो सामाजिक तत्व असामाजिक तत्व सामाजिक तत्वों को दुखी करते हैं उन्हें काट गबार बगा दे खत्म कर दे। जैसे फसल को के अंदर झाड़ झंकार पैदा हो जाते हैं तो उनको निकालने की खातिर जमींदार एक विशेष औजार प्रयोग करता है, इसी प्रकार उनकी ड्यूटी है। अब यहां पर है कि पहले कुछ भी नहीं था, केवल सतपुरुष था सतलोक में। सतलोक का मतलब है वो अविनाशी लोक जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी खत्म नहीं होता। गीता जी में भगवान कृष्ण ने, अब गीता जी भी सुनावांगे जब और खुलेंगे आपकी, कि गीता जी में कृष्ण जी नहीं बोले, वो सनातन परमात्मा प्रवेश हुआ ज्योत नरेंद्र ने और उसने या गीता जी कथी, उसका प्रमाण दूंगा आपको इसी गीता जी में, बाहर से नहीं दूंगा। तो गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब लोक कल्प का अंत होगा अर्जुन, ये सारे जीव प्रकृति में लीन हो जाएंगे, अर्थात सब खत्म होंगे, ब्रह्मादि के लोक भी नष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं रहेगा और ना ही स्वर्ग रहेंगे, जो स्वर्ग में निवास करने वाले देवता फिर कहां रहेंगे, जो स्वर्ग ही नहीं रहेगा और इनके उपासक हंस कहां रहेंगे। और इसी प्रकार गरीबदास जी महाराज कहते हैं महाप्रलय जब होगी पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रासेगा, सारी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाएगा, पहाड़ भी पानी में दब जाएंगे, 11 सूर्य और सौर मंडल में से आके इस पृथ्वी मंडल को फूक देंगे, जल भी नष्ट पृथ्वी की राख भी बढ़ा के उठेंगे और ये वायु में अंधी सी बन जाएगी। इस आंधी को फिर यानी पवन में अग्नि जल तत्व को पृथ्वी तत्व को जल तत्व जल तत्व को अग्नि अग्नि को वायु और वायु को आकाश तत्व अपने अंदर ले लेगा। आकाश को ये ज्योत निरंजन सनातन परमात्मा अपने अंदर समा लेगा। ज्योत निरंजन को पारब्रह्म भगवान अक्षर पुरुष वो अपने अंदर ले लेगा। अवगत पुरुष पारब्रह्म अपने अंदर समा लेगा और यहाँ पर धुंधुकार का डंका बाजेगा। ये सब ब्रह्मांड फूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आपस में भिड़ भिड़ कर मरेंगे, खत्म हो जाएंगे और फिर ये जीव महाप्रलय होगी। यहाँ पर एक महाप्रलय दो टाइप की है। एक महाप्रलय में निरंजन का लोक बच जाता है, वो दोबारा कंस्ट्रक्शन इसी ब्रह्मांड की करता है, और एक महाप्रलय में ये सब खत्म हो जाते हैं, और एक तीसरी महाप्रलय होगी जब सब का मतलब 21 ब्रह्मांड है, और तीसरी महाप्रलय जब होती है जब ये अनंत कोटि ब्रह्मांड ये सब नष्ट हो जाते हैं, केवल सतलोक रह जाता है जिसमें पारब्रह्म भी नष्ट हो जाता है। लेकिन ये स्थिति तो अभी बिना गिनती के युग बिना गिनती की सृष्टि उलट पुलट हो लेगी जब वो आती है, ये जल्दी आ जाती है। उसमें सतपुरुष थे सतलोक में, बदल लो सृष्टि रचना। अब आपको हम इस ब्रह्मांड की सृष्टि रचना सुना रहे हैं जो कबीर साहब के आधार पर है। तो उसमें महाप्रलय था, ऐसे ही धुंधुकार था, केवल सतलोक में वो अविनाशी परमात्मा सतपुरुष रहता था। उन्होंने अपने शब्द से 17 शब्द उच्चारण किए अपनी शक्ति थे, और 17 शब्दों से एक शब्द से तो वहां के सभी लोक रच दिए, सतलोक के दीप खेड़े वहां पर जो बनावट से वह न्यारी है यहां से, और 15-16 शब्दों से 16 पुत्र उत्पन्न किए वहां के देवलोक, वहां जो सतलोक की जो सृष्टि वहां की, उसमें पहले शब्द से सभी लोक आदि रच दिए, दूसरे शब्द से कूर्म नाम के पुत्र की उत्पत्ति की, तीसरे से ज्ञानी, चौथे से विवेक, पांचवें से तेज, छठे से सैद, संतोष, सुरति, आनंद, अक्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, और 17 से योग संतान। ये इनके पुत्रों के नाम हैं जो सतलोक में होते रहते हैं। इस प्रकार सतपुरुष ने 17 शब्द उच्चारे जिसमें 16 शब्दों से 16 पुत्र, एक शब्द से सबदीप लोक मान सरोवर आदि सतलोक में रच दिए। 16 पुत्रों को न्यारे न्यारे लोक देकर उनमें रहने की उनको कहा। उसमें अन्य कंस्ट्रक्शन और करनी थी, उसके लिए अचिंत नाम के अपने पुत्र को जो 12 नंबर का है उसको कहा कि आप सृष्टि रचो, वहां के लोक रचो। उसके लिए उसने अक्षर की उत्पत्ति की, अक्षर ने अपनी 4 अंशों की उत्पत्ति की। 4 अंशों की उत्पत्ति को देखकर अक्षर पुरुष घना प्रसन्न हो गया और वहां पर अमृत सरोवर में जाकर आनंदित हो गया, नींद आ गई, और काफी दिनों तक कोई भी सृष्टि नहीं रचेगी। तो सतपुरुष ने कहा कि सृष्टि अचिंत को कहा था सृष्टि रचो, अचिंत ने कहा कि अक्षर पुरुष ऐसे उसमें अमृत सरोवर में सो रहा है, उठ नहीं रहा, गहरी नींद रहा है, उसको कौन जगावे, मन मन ने करा के श्राप दे दे, ऐसा भी डर लग गया ऋषियों थे। लेकिन सतपुरुष ने एक अंडा बनाया सबद शक्ति थे, उस अंडे को जल में डाला, घना बड़ा अंड था, और वो गड़गड़ाहट करता हुआ जब नीचे जल में प्रवेश हुआ तो उसमें अचिंत के उसके अक्षर पुरुष की आंख खुल गई। अक्षर पुरुष की जब आंख खुली तो एकदम वो जैसे कांची नींद उठा ना आदमी, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी मिला हुआ है उसमें। उसने जब देखा वो अंडे में वो तेज क्रोध प्रवेश कर गया और वो अंडा फूट गया। अंडे के फूटने में उसमें से एक तेजोमय पुरुष निकला जिसका नाम ज्योत निरंजन रख दिया। तेज प्रकाश था उसके रूप, प्रकाश तेजोमय शरीर था उसका, यानी उस तेज से उसका दीप्तिमान शरीर हो गया और पुरुष बनकर निकला, उसको ज्योत निरंजन कहा। आकाशवाणी हुई कि अक्षर पुरुष तुझे जगाने के लिए हमने अंडा भेजा था और अब तुम दोनों के दोनों बाहर आओ। बाहर आए और कहा कि तुम तीनों अचिंत के लोक में रहो, अचिंत अक्षर पुरुष और ज्योत निरंजन। बाकी 15 पुत्रों को तो न्यारे न्यारे लोक अचिंत के लोक में ये 3 इकट्ठे हो गए। अब निरंजन ने सोचा और तो सारे भाई अलग अलग रहते हैं, तो हमारे को 3 को एक में बांध दिया महाराज जी पिताजी ने, मैं तो अपना न्यारा राज करूंगा। तो उसने न्यारा होने की प्रवृत्ति बनाई, 70 युग तप 1 किया, 70 युग तप 1 किया, 64 युग तप 1 किया। प्रथम 70 युग के बदले में उसने के मांगा कि मुझे न्यारा लोक दे दो। सतपुरुष परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने प्रसन्न होकर 21 ब्रह्मांड का राज 70 युग के तप के बदले में दे दिया। अगले भाई इन मतों खूब राजी वाले, और ये 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। ये 21 ब्रह्मांड उस सतलोक में ऐसे हैं जैसे बड़े महल में एक माचिस रखी हो, इतनी जगह है, उस इतना बड़ा सतलोक है वह। अब नरेंद्र ने सोचा इसमें भाई कि मैं कंस्ट्रक्शन करूं, अपनी न्यारी रचना करूं। वो दूसरी बार 70 युग तप किया तो सतपुरुष ने पूछा भाई के मांगे वो, लोक मांगे थे दे दिए। तो उसने सहजदास को बताया, क्योंकि सतपुरुष ने अपने पुत्र सहजदास को भेजा कि सहजदास मेरे की को पिताजी से कहो कि मुझे इसमें लोक रचन की सृष्टि रचना की सामग्री दे दे। आकाशवाणी हुई कि कहो इसको कि कूरम के पास, इसके बड़े भाई के पास सृष्टि की रचना की सामग्री रखी है, वो लिया, पर लेना हाथ जोड़कर। हाथ जोड़कर लेगा तो इसकी सृष्टि बढ़िया चलेगी, और कोई अकाल मृत्यु दुर्भिक्ष नहीं होगा। निरंजन ने पता लग गया कि कोरम के पास सृष्टि बड़े भाई दो रहस है, चला गया। कोरम से पूछा कि मुझे वो लोक रचन की सृष्टि दे दो, रचन सामग्री दे दो। वो कहने लगा भाई ये तो बहुत कीमती है और पुरुष के पूछे बिना मैं दूं को ना, पिताजी तो पूछूं पहला। ने बोला भले पुरुष मैं झूठ बोल रहा हूं तेरे ते, मेरे पे यकीन नहीं करते आप। ने बोला यकीन 100 का 100, लेकिन भाई उनका आदेश भी तो है कि मेरे से बूझ लेना या किसी को दो तो घनी जरूरी चीज से है। तो 2 मिनट बैठ, मैं समाधि लाता हूं और पुरुष के चरणों में नमस्कार करता हूं, जैसे हम टेलीफोन करते हैं कि मैं टेलीफोन पर पूछ लेता हूं। लेकिन संतों का टेलीफोन समाधिस्थ होकर ध्यान मगन होकर उनके चरणों में पहुंच जाना होता है। अब ध्यान समाधि का है सब झंझट हो सा, मन मन समाधि लाग जा 6 महीना में वापस हो। और निरंजन ने बेरा था ज्योत निरंजन ने कि एक बार समाधि लाग गई मन मन 6 महीना में उल्टा आवा तू अड़ बाट देखे जागा मुंह भाई। उसने तो ध्यान लगाना चाह उसका पकड़ कर मुकट और न्यू लाओ मेरी बात सुन, पीछे लगाना समाधि समुधि मैं झूठ बोलू, अर्थात ध्यान नहीं लगाने दिया। और ज्यो ही उसने मुकट हाथ लाया मुकट हाथ में आ गया, उस मुकट में तो ये सारे पहाड़ पृथ्वी ये सब अपने 9 ग्रह पृथ्वी 7 समुद्र या पानी पुनी सारे सूर्य चांद सितारे 9 लाख अपने अपने स्थान पर घूमन लागे। अब यहां पर बुद्धि हमारी संकीर्ण हो जाएगी कि यह बनावटी सी बात है, ईसा मुकट क्यों होगा इसमें ये बूंदे 7 समुद्र पहाड़ और पत्थर सब कमर रखे थे गपौड़ पेलना, ये उन लोगों के लिए जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है। अब वहां पर ये बीज रूप के अंदर थी सारी सृष्टि रचना। जैसे बड़ का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है बट वृक्ष, और वो उत्पन्न कहां से होता है एक छोटे से बीज थे, जो राई का भी से भी छोटा होता है वृक्ष बड़ का बीज, और एक बर्मंटा होता है यानी बट का फल बेर जोड़, बेर तो आम देखा बड़ का फल शायद ना देखा हो, इतना कोस है और उस मीठी गोली जोड़ और उसमें कोई कहे कि इस बट के फल में ये दिखाकर उठे बेर जोड़ और उसमें कहे कि इसमें 1000 वट वृक्ष हैं तो ये सामने दिखो, और वट वृक्ष मनमाने छावले में भी ताजपुर में भी सारे के घूम जाते हैं, उसने आगे बढ़न की और समय मिल जाते स्थान मिल जाते, इतना लंबा चौड़ा फैल जाता है वट वृक्ष। अब इतने बड़े वट वृक्ष ने बड़के वृक्ष ने दिखाकर न्यो का इस फल में 1000 है ऐसे ऐसे, तो नादानता सीकर और ज्ञानवान फौरन पकड़ेगा बिल्कुल सही है बीज से बना ही है। इसी प्रकार ये सारी सृष्टि को इन्होंने सोचा न्यू थी नहीं, इससे भी सूक्ष्म बीज है इसका सृष्टि का। ये 5 तत्व वहां पर मूल रूप में थे उस कूरम के मुकुट में, और उस मुकुट में ऐसे धरे थे जैसे एक कोने पर माखी चिपका रखी हो, इतने बड़े मुकुट में, और बाहर आते ये फैल गए। जैसे एक छोटी सी टिकिया होती है बच्चे होली या दिवाली पर उसका अग्नि लगा देते हैं, बिल्कुल छोटी सी बटन के समान होती है, और वो उसमें फिर नो फो फो कर और इतना बड़ा सांप बन जाए नो और नो घूम जाओ ऐसा मोटा दिखे। वो कहां से आ गया उसमें? उस टिकिया से। उसमें था वो पर दिखे ना था, उस अग्नि ने उसका वो आकार प्रज्वलित बना दिया, प्रफुल्लित कर दिया। इसी प्रकार ये इतना ही व्यवस्था है इन ब्रह्मंडा का, जैसे वो टिकिया तो बना हुआ सांप वो सब बहुत होता हाथ लगते टूटे। तो ये स्थाई सृष्टि नहीं है, ये अस्थाई है, पर समय थोड़ा सा लंबा है इसका अस्थाई होने का, इसका विनाश होने का थोड़ा लंबा समय रखा हुआ है, इसलिए हमने अस्थाई लागे। तो जब कोरम तो निरंजन तक कूदता आया, अगला ले समा दिया, अपना काम बन गया, डांक ठोकी आ गया वापस। उधर से कोरम कहने लगा, पिताजी सत्पुरुष हैं कि निरंजन आया था और बदतमीजी कर गया मेरे संग में, और आप एक बार आज्ञा दे दो तो मैं उसने घड़ दू, क्योंकि कूरम इस निरंजन तक घनी शक्तिशाली है। सतपुरुष कहने लगे, भाई देखो तेरा छोटा भाई से उसकी करनी का दंडोत्सन मिलेगा, आप ना उसको कुछ कहना, और बड़ा का इसी में होता है मानता कि उनको माफ कर दे, तो वो क्योंकि वो संत आत्मा है उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है जी जैसे आपकी इच्छा। अब भाई 64 युग तब फेर किया उसने निरंजन ने, क्यों किया कि अब इसमें जीव चाहिए, अब ये तो पृथ्वी भी बन गई, 9,00,000 तारे भी बन गए, चांद और सूरज भी हो गए, तो अब ये इस पर जीव भी चाहिए, और बिना जीव के इसका मैं करूंगा क्या, इन पहाड़ और पत्थरों का मेरा अकेले का मन को ना लग गए, अब यहां पर जीव चाहिए। 64 युग तप के बाद फिर सतपुरुष ने सोचा, इसका तो रोज का काम हो गया, लाइव के इसका पक्का प्रबंध करता हूं। कैसा किया, जैसे बच्चे ने भेजे स्कूल में और पावस नीमे में और कम तेन का मैंने तो कार ले दे, जब जाऊं कॉलेज में फलाने का छोरा कार में जाता है, या मोटरसाइकिल ले जब जाऊं कॉलेज में, तो वो माता पिता समझ जाता है ये भी ऊपर है कोई ना, बकवास जहां पा गया, अब इसका पक्का काम करते हैं, ब्याह कर देते हैं। उसने बलो बला के कहेंगे, बेटा अब तो शादी के योग हो गया, शादी कर देते हैं तेरी। अब शादी के नाम पर एक दो बदलना टैगर बालक फिर स्वीकृति दे दिया करे, फिर ब्याह हो जा। ब्याह हो पाछा वो अपने नून मिर्च में उड़ जा, फिर माता पिता का पीछा छूटे। इसी प्रकार सतपुरुष ने इस निरंजन का ब्याह करना चाहा, पर वो ब्याह ऐसा नहीं था जैसा हम करते हैं, उनका ब्याह और तरह का था। उन्होंने एक कन्या बनाई अपनी सब शक्ति से सतपुरुष ने, जिसका नाम आदि माया अष्टंगी आठ भुजा वाली, जिसको भवानी भी कहते हैं। वो लड़की अपनी सब शक्ति से बनाई, सुंदर शक्ति, सुंदर लड़की। अब उस लड़की को सहजदास से कहा कि इस लड़की को और निरंजन के पास छोड़ गया और बता देना कि इसके पास सब शक्ति है, जितने जीव निरंजन कहेगा बना देगी। अर्थात ये सृष्टि गृहस्थी क्रम नहीं था, वहां पर शब्द से सृष्टि रचनी थी, जितने जीव कहेगा ये प्रकृति मूल है, ये आदि भवानी ये माया है, इसके पास बीज रूप में सब जीव दे दिए। अब वो जी अब एक भाई ने प्रश्न किया, बड़ा जटिल प्रश्न किया कि जी फिर हम क्यों फसियाड़ा आके, चलो निरंजन ने तो गलती करी, हम गधे क्यों बने यहां पर, यह समझ में नहीं आती। हम हमारे मन में एक गंदी वृत्ति है, वो वहीं से पैदा हुई, निरंजन करता था तप और हम देखे देखा करते, सतलोक में थे हम सभी, हम देखते थे ओकस ओकस नो अकराई तो भाई चाला पाट रहा है, 64-70 युग हो गए कदके में उठता न चालता एक तरफ खड़ा से, भाई तो बहुत अच्छी शक्ति दिखे से, और आकाशवाणी होती थी तुम अपना काम लगे रहो उसको मत देखो नादान को, लेकिन हम लुकमा छुपमा यानी इतने आकर्षित हो गए उस निरंजन के प्रति के भाई ये तो चालक आदमी सही तो कसुता है, ये तो बहुत कठिन तपस्या कर रहा है भाई, इतनी तो सब पतना हुआ है। अब यह हमारे में आज भी बीमारी से, अब कोई भगवान आकर अपना ठीक ठाक बताओ यो काम न्यू कौन बने न्यू कर ले, अरे एक तपस्वी हुआ तप करने लग जा साबत गांव चला जा, या वह बीमारी आज से हमारे मन। कबीर साहब ने सतपुरुष ने फिर आकाशवाणी करी, तुम अपना उधर मत देखो नादान की तरफ, एक बात न्यू हो जा जो बालक स्कूल में आकर मास्टर जानते फिर न्यू देखे, بندی چھوڑ بلا لے تارے بھی کارٹون رو گے لے مانتے کوئی نہ. ادھر سے نرندن سے پوچھا کہ بھائی تو تیرے پاس کوئی جانا چاہتے ہیں تین پوچھ لے پرانیوں کو. نرندن نے تو وہ پہلا بیرا تھا کہ سارے تیرے کا نہیں دیکھے, سب سے کہا کیوں بھائی تم وہاں چلو گے میرے پاس, نارا لوک بناواں گے, نارے وہاں پر آنند سے رہا کریں گے, تمہیں سرگن روپ دوں گا, ایسے کروں گا ہاں, اور بھائی اڑا موج ماریں گے. تین بولے ہم تو تیار صاحب مہارا جیت کوا دے ستپرس تک کوا دے, ہم تو تیار بیٹھے ہیں. نو بولا جی ٹھیک ہے یہ سارے تیار بیٹھے ہیں, کیوں بھائی تم جانا چاہتے ہو؟ ہاں جی مہاراج جی کہتے ہیں اچھا روپی کھیلن آیا تھا تو سکھ ساگر نہیں پایا. بنڈا لیے اس نے نرندن جی نہ پاؤں تین بولا بھائی ایک کام کریو پر تم ہوتا لیے سنگر کہ تیار اس گیلا پر وہاں تم نے دکھی کرے نا یو اس ستنام اور سارنام نے یاد رکھیو, یہ ہمارے کو دے کے بھیجا تھا مہاراج جی نے کہ اس نام کو اور مجھے تم یاد رکھنا, جس دن تم یہ ٹیلی فون ملا دو گے یہ نمبر اس دن میں تھارے پاس آ جاؤں گا اور اسی سے میں تم نے اسے لے آؤں گا. اگنیو بلا جی پکلے پھر تو ہم نے دیکھتا کیس ہے یہ ستنام اور سارنام مہاراج جی کدے نہیں بولیں گے. بس ٹھیک ہے جاؤ تر اب وہ بیج روپ میں مول روپ میں ہمارے کو اس مایا کو دیا پرکرتی کو آدی مایا کو اور وہ بھیج دی ستپرس کے ساتھ, ستپرس نے سہج داس کے ساتھ نرندن جی کے پاس. نرندن جی سے کہا سہج داس نے کہ لے بھائی یہ بہن ہے کنیا اور اس کے پاس ساری سکتی ہے, جتنے جیب تم کہے گا ایک بس سبت تک کہے گی اتنے بنا دے گی اور لے چھوڑ دی اس کے پاس رہو اپنے لوک میں ٹھاٹتا. یہ ستلوک میں تھا یہ کھیل سارا, اب تک ستلوک میں ہی چل رہا یہ کام. اس نے کیا ہوا اس لڑکی کو دیکھ کر نرندن کے من میں کھوٹ پیدا ہو گیا نیچتا آئے گی دشکرم کی. اب یہ بیماری ہے وہ من روپ میں آج نرندن سب میں سماویش ہے. جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں بہن بیٹیوں کی عزت پر ہاتھ ڈلا ہوا, یہ من جو ہے یہ نرندن سے. اب جب چلا گیا سہج داس رہ گیا اکلا, اسی سمے اس کنیا کی طرف اس نے بری درشٹی کی اور گندے کرم کے لیے پریرت ہوا. لڑکی کہنے لگی نرندن ظلم نہ کرائے, تو میرا بھائی اور میں تیری بان, تنیسا ظلم نہیں کرنا چاہیے اور میرے پاس سرشتی میں رس دوں گی سبت سکتی ہے میرے پاس تو مان جا. لیکن بھائی کون سنے جب اتنی نیچ ورتی ہے اس من کی, تو ایک بھی نہ مانیا اور کتی جب دشکرم پر اتارو ہو گیا اور لڑکی کو ایسے اپنے بازو میں پکڑنا چاہا, وہ بھی تو اس سے باپ کی بیٹی تھی, سکسم روپ بنایا جو نہ دکھے بہت چھوٹا اور شریر کے ماں نرندن کے پیٹ میں چلی گئی. اس نے بیرا کے باغی نہ جان دینا اور کوئی لوکن کا ستھان نہ اس کے پیٹ میں پرویش کر گئی کہ یہاں ٹھکانہ پا سکتی ہوں اپنی عزت بچانے کی خاطر. وہاں سے پکار کیا کہ ہے مہاراج جی ہے پتا جی ایسے ایسے نرندر نے میرے ساتھ ظلم کیا اور اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے, اپنی عزت کی رکشا کے لیے میں نے اس کے پیٹ میں سرن پا رکھی ہے, میری جان بچاؤ. ستپرس نے سہج داس بھیجا کہ بھائی جا سن لے میری بات, اس نکمے نے 21 برمنڈ سمیت یہاں تک کاٹ دے, یہ ستلوک میں رہنے کے قابل کوئی نہ میرا کیان بگاڑے گا. اور اس ستلوک میں جو ایسا ظلم کر دیتا ہے اس کو شراپ لگ جاتا ہے, اس کو بیماری لگ جاتی ہے, 1,00,000 جیب روز کھائے گا اور 1,25,000 پیدا کرے گا اور یہاں نہیں رہ سکتا. اب وہاں سے اس نرندن کو سہج داس نے آ کر کبیر صاحب کا پروانہ سنا دیا, اگ سن لے بھائی لڑکی پیٹ تک کاٹ دی, اگ تم دونوں کیونکہ مہاراج نے وچن بد ہو کر یا کنیا تیرے تے دی تھی اور بھائی اس کی سزا تو ہی پاؤ گا, 1,25,000 پیدا کرے گا 1,00,000 روز کھاوے گا اور پھر ان کی ساری ویوستھا کرنی پڑے گی سب کا اور بھائی نکل جائے یہاں سے اور دوبارہ نرندن تو اس لوک میں نہیں آ سکتا. اب وہاں سے نرندن 21 برمن سمیت اور مائی سمیت نیچے آ گیا, ستلوک سے 16 سنکھ کو اس کی دوری پہ, یہ 21 میں برمنڈ کا آخری لوک ہے, آخری برمنڈ ہے 21 میں برمنڈ کا اور اس میں آخری لوک ہے پاتال لوک. پاتال لوک ستلوک سے 16 سنکھ کو اس کی دوری پہ کبیر صاحب نے گریب داس جی نے بتایا 16 سنکھ, 1,00,000, 10,00,000, کروڑ, 10 کروڑ, ارب, خرب, نیل, پدم, سنکھ طرف پھر بدنیت کری. اس نے پھر پرارتھنا کری نرندن گنا کال پاؤ گا ये गंदी सृष्टि मत चला, मेरे पास एक सबल शक्ति है, जितने जीव का मैं बढ़ा दूंगी। पर नादान ने, महाराज ने लिखा, कबीर साहब ने एक नहीं सुनी, तो जबरदस्ती शादी करके तीन बच्चे उत्पन्न किए, बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव हुआ। अब ये सृष्टि जुड़न लागरी, सारे शास्त्र सुचारू होंगे। और फिर नरेंद्र ने याद आई कि बालक सैने होंगे, और भाई फिर सैने हुए पाछे 1,00,000 जीव मैंने खाने, ये मेरे से दुनिया नफरत कराया करेगी, हाहाकार माचे, 1,00,000 परिवार रोज रोवे टक्कर मार मर के इस पृथ्वी मंडल पे, आराम बाकी राजी सा जैसे हम कौन मरे न हमारे बालक मरे। और वो मर गए, वो कौन से सोच रखा था बेचारा ने, उड़ीसा में केन रथ हो गया है, और माँ परिवार बच्चे बहन भाई सारे मर गए, जायदाद गई, ये झूठा सांग ला रखे हमारे कालबली ने। क्या उन्हें सोच रखा था जैसे हम राजी हो बैठे हैं, और जायदाद के ऊपर मरना मांड रखा, लूट लिया, खसोट लिया, जोड़ ले, धर ले, या नादानी है कति सौ की सौ हमारे अंदर, या करी किसने। लेकिन फिर नरेंद्र कहने लगा कि माया अब मैं किसी जीवन दर्शन नहीं दूंगा आज के बाद। वह बोले एक बात बताओ कि आप तो निराकार हो जाओगे, निराकार का तात्पर्य है कि मैं ऐसे लोक में जाऊंगा ना ब्रह्म आ सके, ना विष्णु आ सके, ना शिव आ सके, इसी किस में ब्रह्मंड के ऐसे लोक में बैठूंगा, और ना माया तू आ सकती। तन्यो बोली मैं अकेली इतने इतने लंबे चौड़े ब्रह्मांड को क्यों कर चलाऊंगी। वो कहता है कि काम तो करूंगा मैं सारे, तुम ना तो ब्रह्मा करे, ना विष्णु कर सकता, ना शिव कर सकता, जो करना होगा मैं करूंगा, और बाकी पावर मैं तुझे देता हूं, तू करेगी, पर मेरा हुक्म तुझ में आएगा और तेरा इनमा होगा। जब ये बच्चे सियाने हो सागर मंथन पर भेज देना। सागर मंथन पे जो वस्तु निकले पहले पहले को, दूसरी दूसरे को, तीसरी तीसरे को, ऐसे दे देना। जब बच्चे सैने हुए वो बोले माँ हमारा पुत्र पिता कौन है। अग भाई कोई तुम्हारा पिता नहीं, और मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारा पिता। माई ने सोचा कि यदि मैं कहूंगी कि तुम्हारा पिता तो 21वें ब्रह्मंड में बैठा है, मनमाने जद ला ले माँ पिताजी के पास चलो, बच्चे की जद भी माड़ी होया कर, तो अपने झूठ बोल दी उसने, अग भाई तेरा पिता सही कोई ना, अपनी जान बचाना या मजबूरियां इतनी है, ना चाहते हुए जीव ने प्रणा कित के बोलना पड़ जाए, तो उसने ऐसे कह दिया। चलो बच्चे थे स्वीकार किया, सैने हो गए, आकाशवाणी हुई कि सागर मंथन पर भेजो, नरेंद्र ने कहा। सागर मंथन हुआ, वेद निकले चारों, वेद ब्रह्मा ने पढ़े, उसमें पाया कि सृष्टि का रचने वाला कोई निराकार शक्ति है, वो सारे जीवों का पिता है। तो उसने अपनी मां से कहा, मां तू झूठ बोलती थी कि पिता कोई नहीं मारा, इसमें लिख रखा वेदों में। ने बोली भाई वो तुम्हें दर्शन तो देखो ना, लिख रखा है, अगर योग विधि लिख रखी पाऊंगा दर्शन, अक नहीं हो सकती। चार योग तक ब्रह्मा ने समाधि लगाई, कुछ नहीं पाया, और कह के गा था कि दर्शन करके आऊंगा, ना तो आऊंगा कौन ही। तो ठीक से चार युग के बाद आकाशवाणी नरेंद्र की होती है कि माया वो जेठा बेटा कहां गया, सृष्टि क्यों नहीं रच रही। उसने बताया वो तो समाधि लाए बैठे हर नो कह, मैं पता ना ढूंढ लूंगा, उसको कह दे मैं दर्शन कोई ना दू, और उसको ला उठा के। तो माया ने क्या किया, एक लड़की और बनाई जिसका नाम गायत्री रखा, कि बेटी जा अपने भाई ने बुला के ला, और ऐसे ऐसे चरण छू देना जब वो उठेगा। गायत्री ने चरण छू दिए, ब्रह्मा की समाधि टूट गई। ब्रह्मा श्राप देने लगा कि कुलटा तू कौन है, और कैसे तू मेरे तप भंग करने के लिए क्यों आई। कहने लगी श्राप बाद में देना, मेरी बात सुन ले, मां ने भेजी हूं, और ऐसे ऐसे आपने सृष्टि रचनी है, आप बिना काम अधूरा है। कहता मैं चल तपड़ो, पर तो मां के सामने वचनबद्ध हो गया था। उस समय तांडी पाग्या ने बोला जब आऊंगा दर्शन हो गया तो आऊंगा, ना कति नहीं आऊ, अरी भोरी मुश्किल करके उकर जा। तो वाने बोली उन्हें बोला तू मेरी गवाही दे दिए मैं जब चालू। तने बोली मैं क्यों तेरी झूठी गवाही दू। तो यहां पर ऐसी शर्त रखी उस लड़की ने, या बताने जोगी भी कोई ना। ब्रह्मा ने स्वीकार की, फिर वो कहती है मैं एक और लड़की बनाती हूं, अपना एक गवाह और चाहिए। उसने एक पौपोती नाम की कन्या अपनी सब शक्ति से बना दी। उस लड़की से कहा कि आप हमारी गवाही दे देना कि ब्रह्मा को पिता के दर्शन हो गए नरेंद्र के। वह बोली मैं क्यों दूं झूठी गवाही। उसने भी ऐसी गलत शर्त रखी, वो भी ब्रह्मा ने स्वीकार की। तीनवा ना कह और माँ के सामने कह दिया कि हमने पिता के दर्शन, इसने पिता के दर्शन हो गए। वह बोली रे ढूंढ लिए पिताजी। कहा ढूंढ लिए माँ। अगवाई क्यों कर मानू मैं, कैसे विश्वास करूं कि इन दोनों पूछ ले, क्यों ये तुमने देखा। अका हमारी आंखें दर्शन देकर गए नरेंद्र जी, और बड़ा सुंदर शरीर था, न्यू था, ब्रह्मा वेद पढ़े रखे थे, न्यू कह दिए प्रकाश सा दिखो था, झलमल झलमल हो रही थी, अड़े तीन जाने ये सारे के सारे, ये योगी भी बस यहीं तक जाने हैं कि बस तेजो में रूप से प्रकाश दिखे से हो गया कट गया टंटा। तो वो कहने लगी ऐसे ऐसे दिखा, और कति ने सामने खड़ा था आदमी सा दिखा था। वह बोली कि मैं तो मिलती जुलती, उसने भी लागे आसार से कुछ तो पढ़ रखे वेदों में। वो सुनकर न्यू क्यों बताया थी, समाधि से पाया को नहीं, चार युग भी ला ली, अब तीन घंटे बैठा के बता कौन भगवान दर्शन कराओगा, ये बीमारी समझनी है सारी की सारी। तो वह मुंह लटका के एक लो जा बैठी भवानी, ने बोली नरेंद्र संभाल अपने डमडमे ने, तो झूठा भी नाय। वो बोली कैसे कि मुझे कहता है मैं दर्शन ना दू, अरे इनको दर्शन दे दिए तने, एक तो दोगला हो गया हर्षम वाला अपने काम ने। न बोले आकाशवाणी हुई कि झूठ बोला तीनों के तीनों, और मन ने कोई ना दर्शन दिए। अब आई वाला ठी लेकर ब्रह्मार वो तीनों कर लिए लाइन में टेढ़ो खड़े हो, तुम क्या कह रहे थे तुमने दर्शन हुए, और मुझे आकाशवाणी हुई है तुमने कोई दर्शन नहीं हुए। अब तीनों आसन लाए गए। अकमा तो मान्यू को था ना भी मैं आऊं क्यों, सारा लेकर आया था, शराप दे दिया ब्रह्मा को, कहने लगा निकम्मे तेरी जग में पूजा नहीं होगी, और गायत्री को शराप दे दिया कि तू तो गऊ बनेगी और तेरे तू जो है ना तेरे सांड पति होंगे कई कई। पोपवती को शराप दे दिया कि तू तो गंदी बूटी, गंदे स्थान पर उत्पन्न होने वाली गंदी बूटी की जुन्नी पावेगी भाग्यों से। ब्रह्मा तो बेहोश हो गया, और गायत्री जुन्नी छोट गई और आकर के गौ के रूप जो निधारण कर ली। ऐसे पोपवती ने अब क्यों हो गया, क्योंकि तेरी जग में पूजा नहीं होगी और तेरे जितने भी अनुयायी होंगे तेरे जैसे ठग होंगे, दुनिया ने ठग ठग का झूठी बात बनाया करेंगे, शास्त्रों का असली ज्ञान दें कोने और अपनी रोजी रोटी बनाओगे। ब्रह्मा इस बात को सुनकर बेहोश हो जाता है। कहते हैं विष्णु ना का सारा दिया भाई, तू चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूं। तो इतने में आकाशवाणी नरेंद्र ने की के गायत आदि माया तने गलती करी, तने शराब नहीं देना था इनको, अब तुझे मैं शराब देता हूं। क्या शराब देता हूं कि द्वापर युग में तो द्रौपदी बनेगी, तेरे पांच पति होंगे। ये कबीर साहब की वाणी सुना रहा हूं आपको, जिसने एबीसी गिना दिया स्थाना दाना शास्त्रों का। माया बोली नरेंद्र त्रिमोद से तेरे बस आगे कुछ भी कर ले, कि मैं करूं हूं जब तू करण नहीं देता, ये बिना दमकाए बालक मानने क्यों करे, अभी नौट झूठ बोल दी इसको स्वीकार कैसे करूं मैं। ठीक है तेरी मौज। कुछ दिनों के बाद अब माया बोली विष्णु ने के भाई बेटा उरे ना तू काम आ, कि अब तुम भी ढूंढ ले अपने पिता ने, कदे फिर बीच में समाधि लाला बैठो, सृष्टि कर्म ने भंग डालो। अच्छा माता जी। शेष वो भगवान विष्णु जो है अक्षीर समुन्द्र में आ गया, वहां पर शेष नाग के लोक में पहुंच गया। उस लोक में जाकर शेष नाग ने देखा को तुर्य की, अब तेरी जुरिडिक्शन में तेरी सीमा पर आ कैसे गया ये, एकदम 1000 मूत है फनों से धुम्मा छोड़ दिया जैसे जहर का, और विष्णु उस्मान जी में दिखा को नहीं, विष्णु जी का शरीर सांवला हो गया। अब विष्णु जी ने सोचा ला इस कीड़े की गर्दन दाब दूं, इसने बड़ा कोई मतलब हुई बिना काम के मेरा शरीर ऐसा गंदा शरीर कर दिया। तो आकाशवाणी करी नरेंद्र ने के विष्णु जाकर अपनी मान साफ साफ बता दे, और इसको अब मत मारना, इसका बदला तो द्वापर युग में लेना जब तू कृष्ण बनकर जाएगा, अब इसको कुछ नहीं कहना, अरे नो लड़ जड़ मरोगे तो यहां सृष्टि कौन रचेगा, वापस जा और अपनी मां को साची बता दे मैं दर्शन को अंजू, नहीं तो तेरा ब्रह्मा वाली हालत हो जाएगी। अब विष्णु जी आकर अपनी माँ के चरणों में 8 बजा वाली के जगदम्बिका के चरणों में पड़कर ने बोला माँ मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए और ना ही हो रहे, ठीक है बेटा, तू सत्यवादी होगा, तूने साची बोली है, तेरी जग में पूजा होगी, सृष्टि पालन का काम मैं तुझे देती हूँ। फिर बुलाए शिव जी, किले बेटा तू भी ढूंढ अपने पिता ने, कहते फिर पाछे समाधि लाए बैठा रहे। वो कहने लगा, माँ जब मेरे दो भाइयों को नहीं मिले पिताजी, तो मैं तो कोशिश को नहीं करता, मुझे एक वरदान दे दे माता कि मैं मरूं कौन है। बेटा ये काम यहां नहीं हो सकता, जो उपजा है वो मरेगा और जो मर गया उसका पुनर्जन्म अवश्य है, इस 21 ब्रह्मंड में यह बचा नहीं। बाकी मैं तुझे एक विधि बताती हूँ कि तेरी आयु सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे दीर्घ आयु होगी तेरी, अकमा यह बता दे। उसने कहा कि पुत्र तू ज्यादातर समाधि में रहा कर और अपने प्राणों को दसवें द्वार पर रख्या करे, तेरी लंबी आयु हो जाएगी और ऐसे ठंडे क्षेत्र में रहना। शिवजी ने, आप देखते हो ज्यादातर समाधि में ही रहता है, ठीक है माता जी। उसके बाद फिर आकाशवाणी हुई कि इनको इनका ब्याह कर दे, सृष्टि चला। माता ने कहा कि जाओ बेटा तुम फिर सागर मंथन करो। यहां पर लिखा है कि माता ने खुद कहा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, तीनों के तीनों मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो और बच्चे पैदा करो। अब तीनों के तीनों नाराज हो गए, कहने लगे माँ तू तो जमाई न कमी निकली, या क्या बात कही आपने, माता नार पुत्र की होई, हे जननी ये कहाँ आग धोई, इस महापाप ने की दो अंगे। तो वहां पर कहते हैं वह माया अपना बदल गई सारे खेलना, ने बोली बेटा मैं तो मासी करो थी ना थारी गेला, अब देखूंगे थारे में कितना गुण और ज्ञान है। अच्छा बेटा तुम ऐसे करो, सागर मंथन करो, अपने तीन रूप बनाए इस माई ने और गुप्त रूप में समुद्र में प्रवेश होगी। एक सिद्धि बहु चोले चोले धारा, एक सिद्धि बहु चोले धारा, नारे नारे रूप बना ले, एक सिद्धि होती है। सागर मंथन हुआ, तीन लड़कियां निकली नंबर वाइज, तीनों को लेकर घर आ गए। अर्ण्यो कहा था बेटा नारी नारी याद रखना, कौन सी पहले कौन सी दूसरे कौन सी तीसरे चीज निकला वह साथ ले आना। कहने लगे माँ ये पहले निकली, ये दूसरे निकली, ये तीसरे निकली, बड़ी का नाम सावित्री, ब्रह्मा से ब्याह कर दिया, दूसरी का नाम लक्ष्मी, विष्णु ते ब्याह दी, और तीसरी का नाम उमा रखा, वो शिव ते ब्याह दी। अब बेटा तुम अपना 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 घर बसाओ, अब यहां से इस मृत लोक की सृष्टि शुरू होती है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब सुर और असुर इन्हीं से उत्पन्न हुए, निकम्मा बालक हो गया वो राक्षस कहलाया, और जो अच्छे निकले उनको देव कहा। उसके बाद ये सृष्टि यहां की शुरू होती है। अब यहां पर गरीबदास महाराज की वाणी सुनाता हूं आपको, 21 ब्रह्मांड को लेकर चला। अब गलती तो आदमी कर दे से एक बार, फिर पाछा बहुत पछतावा से। अब इसने सोचा चाड़ा पाट गया, अब किसी प्रकार माफी मांग लूं, लेकिन माफी दे कौन। रास्ते में जब आ रहा था इक्कीस ब्रह्मांड के साथ जब वो चल रहा था उसका विमान, रास्ते में सहजदास जो उनके बड़े भाई हैं, उनसे बड़े जिसको सहजदास के रूप में कबीर साहब भी यहां पर आते हैं, सहजदास के दीप में आ जाता है उनका विमान, रास्ते में पड़ता है। वहां आकर सहजदास से वहीं से प्रार्थना करता है निरंजन कि सहजदास मेरे को अपने लोक में रख ले, नीचे ना जान दे। ने बोला भाई देख भगवान पिताजियों का आदेश है, और भाई इसको मैं कैसे मोड़ सकता हूं, उसका मन राजी करता है, कदे यू नाराज ना हो जाए, क्यों पहले बहुत कालीमान रस है, इसको ठेस ना पहुंचे। ने बोला भाई मैं एक बार पिताजी तो पूछ लेता हूं। उन बच्चों को आराम से बैठे, आराम से बैठो, कि मैं पिताजी से पूछ लेता हूं और फिर तेरे दाद ने रोक लूंगा। उन्हें सोची मैं अपने सिर पर कह लू, पिताजी कह देंगे तेरा, रुक जाएगा मन के भीड़ो से यहाँ पे। ने बोला मैं अपनी समाधि लाकर सतपुरुष के पास पहुंचा और पूछा महाराज जी, और निरंजन फिर प्रार्थना करे से, आप बताओ कहां रखो उसने। ने बोला उसने यहां से कति निकाल दे। اور خبردار جب اس کو یہاں رکھا تھا تین طلاق اس کو نہیں رکھنا یہاں پہ اور نیچے وکاروں کے لوک میں بھیج دے. اس کو وشے لوک کہتے ہیں. آد رمین گریب داس جی مہاراج کی گرنتھ صاحب کی وانی 690 پرشٹھ پہ ہے. آد رمینی ادلی سارا زادن ہوتے دھوندوں کارا ست پرس کی نیا پرکاسا ہوتے تخت کبیر خواسا من موہنی سرجی مایا ست پرس ایک خیال بنایا درم رائے سرجے دربانی 64 یوگ تب سیوا ٹھانی پرس پرتھوی جاکو دینی راج کرو دیوا آدھینی برمنڈ 21 راج تم دینیا من کی اچھا سب جگلینیا مایا مول روپ ایک چھا جا موہ لیا جن ہوں درم راجا مایا مول روپ ایک چھا جا موہ لیا جن ہوں درم راجا من کا من چنچل چت دھارا من مایا کا روپ بچارا چنچل چیری چپل چراگا یا کے پر سے سروس جاگا درم رائے کیا من کا بھاگی وشے واسنا من سنگ سے جاگی آج پرس ادلی انوراگی درم رائے دیا دل سے تیاگی. پرماتما ست پرس نے آدی پرس نے دھرمراج کو نرنجن کو دھرمرائے کو دل تن تیاگ دیا ارتھات دل سے اتار دیا کتی کیسے نکمے نے تو یہاں رہنے کو انجو جس نے ایسا ظلم کر دیا اپنی بہن کو ہی اور بدنیت سے دیکھا. دھرمرائے کیا من کا پاگی باگی وشے واسنا سنگ سے جاگی آد پرس ادلی انوراگی دھرمرائے دیا دل سے تیاگی پرس لوک سے دیا ڈھائی ڈھاکر نا دکا دے دیا جیسے ناراض سا ہو کے پرس لوک سے دیا ڈہائی اگم دیپ چل آئے بھائی 21 برمنڈ سمیت اگم دیپ یعنی جو سہج اس سے اگلے لوک میں آگے دیپ میں آگے سہج داس جس دیپ رہنتا سہج داس جس دیپ رہنتا کارن کون کون کل پنتھا. اب وہاں سے آواز کری نا جب اس نے کہ بھائی سہج داس مجھے یہاں روک لے سہج داس باولا سا بن کے بھائی کون ہے تو کے بات سا جان تو سارا تھا انہیں درم پرس لوک تے دیا ڈھائی اگم دیپ چل آئے بھائی سہج داس جس دیپ رہنتا کارن کون کون کل پنتھا. درم رائے بولے دربانی سنو سہج داس برہم گیانی 64 جگ ہم سیوا کینی پرس پرتھوی ہم کو دینی چنچل روپ بیا من بورا من موہنی ٹھگیا گھورا. میرا من چنچل روپ بن گیا اور بھائی من آدانی کر گیا اور اس کی سزا مجھے ایسی بینکر مل گئی اب من بچا لیتا ہوں. ست پرس کے نامن بھائے پرس لوک سے ہم چل آئے کیونکہ ست پرس کے من میں نہیں رہے ہم نہیں بھائے اور اس لیے اس ست لوک نے مجھے نکال دیا. اگر دیپ سنت بڑ بھاگی سہج داس میں ٹو من پاگی بولے ساج سہج داس دل دانی ہم تو چاکر سد سیدانی ست پرس سے ارد گزاروں جب تم رہا بھی مان اتاروں. سہج داس نے بولا بھائی پہلا ست پرس تے پوچھوں پرارتھنا کروں اور پتا جی کہیں تو یہاں رکن دو نہ کوئی نہ رکن دے نہیں تو میرے سے بھی ناراض ہو جائیں گے. سہج داس کو کیا پیانا ست لوک لیا پروانا. اب سمادھی لا کے اور سہج داس پتا جی کے لوگ ست لوک میں پہنچ گئے اپنے دیپ سے اس لوک میں پہنچ گئے اور وہاں پرارتھنا کرتے ہیں. ست پرس صاحب سربنگی اوگت اتلی اتل ابھنگی دھرم رائے تم رادربانی اگر دیپ چل گئے پرانی کون حکم کری ارج آواز کہاں پٹھاؤں اس دھرم راجا. نے بولا جی وہ دھرم راج پھر پرارتھنا کرا دھرم رائے اور آپ کہو بتاؤ کت بھیجو. ہو سکتا ہے اس نے بھی نہیں سوچی مہاراج جی پھر پنر وچار کر لیں ست پرس اس نے کمے کی غلطی پہ لیکن بندی چھوڑنے بیرا تھا کہ یوں یہاں رہ گیا نا اور گنے کو باڑے کرے گا. نے بولا بھائی آواز ادلی ایک ساچا وشے لوک جا تینوں واچا تینوں واچ سے تینوں من کرم وچن تے نو کہ کتی نہیں بھائی 1% بھی گنجائش نہیں اس کے بارے میں دوبارہ عرض مت کر دیے. وہی آواز ادلی ایک ساچا وشے لوک جا تینوں واچا سہج ویمان چلے ادھکائی چھن میں اگر دیپ چل آئی. سہج داس واپس آ گیا اپنے لوک میں آ کے حکم سنا دیا کہ بھائی میرے بس کا کوئی نہ اور یہاں تو نکل جا. پتا جی کتی کرڑے ناراض ہو رہے سے اور بس جمع نہیں سنتے تیرے بارے میں. درم رائے چلے ویمان نا مان سروور آئے ہاں سہج داس चले अधिकाई छिन में अग्रदीप चल आई। हम तो अर्ज करी अनुरागी ही तुम विषय लोक जाओ बड़भागी, के भाई वापस जाओ अपना विषय लोक में बड़भागी, मैं मन मत ना टोके दोबारा, साहब करडे नाराज हो रहे से और मन भी खतरा हो जाएगा, अब कौन आफत मन लेगड़ मंगाल है, चल भाई अड़े। धर्मराय के चले बिमाना मान सरोवर आए प्राणा, मान सरोवर रहना पाए द्रय कबीरा थाना लाए। वहां सतपुरुष कबीर साहब के रूप में वहां आखिर उस अवगट घाटी पे बैठा है, बिखमी बाट पे बघाटी पे, बंकनाल की बिखमी बाटी तहां कबीरा रोकी घाटी, इन पांचों मिल जगत बंधाना लग चौरासी जीव सताना। ओए होए इन पांचा ने मिलकर जगत बांध रखा, कौन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया धर्मराय का राज बिठाया, निरंजन का ब्रह्मा विष्णु महेश नरेश माई ने इस निरंजन के राज का यहाँ पर चमटा गाड़ रखा है। इन पांचों मिल जगत बंधाना लग चौरासी जीव सताना, कुत्ते गधे सुअर और यहाँ के राज ई बोले पड़न लाग जा, सारे के सिर फूटे, बता के रहे हमसे हमारे ऊपर बाज के की तक कौन पकड़ गए तो पकड़ गए ना, इसे कटा के उठे चक्कर आ जाए और बारिश हो जाए तो भिजो परले आगे, मरो सारे के सारे, क्या मरते कोई ना परले, इसी बूंदी फ्लड आती है और भाई एक्सीडेंट बस तो बस टकराओ मर जाओ, के आठ से एक लाख रोज पूरे करने लग चौरासी में जीव सताना, कुत्ते टांग टूटे खाज लग गए कड़ में जख्म हो जा, सिर में जख्म हो जा, कीड़े पड़ जा, टक्कर मारता अंडा पागल हो जा, फिर उन लठा मारे, ये जीव ये हाँ वो पहले मनुष्य शरीर में भी था, अब ये जीव ये हालत करा किस ज्योत निरंजन ने मारी, पर यह समझ में आने वाली बात सच है, आ जा तो बेड़ा पार से भाई, इधर मुंह भी ना करना जिक्र इंसान का, रड़ा किले बनावा महल बनावा कोठी पर कोठी बनावा क्या की खातर है, और सांध ने पता लगे हो उसका तो हार्ट अटैक वगैरह गया भाई, अब बांध ले गया गठड़ी कर्म खोटे कर चला, कुत्ता बनकर कोठी की छाम बैठे बार लगा ना आके, अब दरले सर पर उसको ठीक ने रुसमाया ने, ये बात समझ में नहीं आती, यहाँ पास सड़क छुटकारा जीव चावे यो खोखापुर की झूठी बाजी बिस्त बैकुंड तक आसी साजी, ये खोखापुर 21 ब्रह्मंड कति नकली कति झूठे और 100 के 100 बेकार, आज मैं कितना सुंदर शरीर प्राप्त 12 बच्चे और कारर कोठी और ई मर जाऊं, बता कि खोखापुर होया क्यों आयो, बता इसमें है क्या हमारे पास ये सौदा, यो खोखा पर जो ठी बाजी बिस्त बेखुंट दगा सी साजी, हमने स्वर्ग से ना था ताई और स्वर्ग से ऊपर नहीं जाने थे, और स्वर्ग में के है कि सबसे बड़ा धोखा इस जीव की गेला, यहाँ पुन कट्ठे करे स्वर्ग में जावा आई ओहो हो मौज मोगी, और वानों के ला बेटा कितने ले रहा से अड़ा जमा करा दे सारे, या कमाई संतों की जैसे होटल में चला गया 10,000 रुपये लेगा, वो कहेंगे 10,000 तो 5,000 तो पहले जमा करा और बाकी फिर ऑर्डर देना था कितने दिन रहना चाहता है यहाँ पे, और जब वो 5,000 खत्म होना होंगे ना 5,000 और जमा करा, अरे मांग जो मांगे वही मिलेगा सारे ठाट काट, तो ये स्वर्ग है वो पुण्य जानते हैं जमा करा लेंगे उस स्वर्ग में, और उसकी पूंजी के आधार पर उसका जीवन निर्धारित कर देंगे कि इतने दिन रहेगा यहाँ पे और तेरी मर्जी कुछ भी खा, लेकिन वो सीमित डाइट है वहां की, इस डाइट के आधार पर खाएगा तो इतने दिन रहेगा और अधिक खाएगा तो जल्दी छुट्टी हो गया, मौज मार वहां पर सबसे गंदे से गंदे कर्म स्वर्ग में, अप्सराएं नाचे वहां पर मदरा पीवे और सारा दिन बकवाद बावे, उन्हें देवतार स्वर्ग कहते हैं, और पुण्य खत्म हो ना पकड़ कर टीटवी देव शरीर समाप्त नरक में ठोक दिया, नरक भोग क्यों पाप भी गिल्ला बने, जैसे कर्म प्राणी करेगा यहां पर दोनों भोगे हैं, पुण्य के लिए तो स्वर्ग धोखा और पाप के लिए नरक ओखा, और फिर 84 का गेड़ा यू भी नहीं का नहीं यू भी नहीं बचता, कोई ना सोचते यो भी कट जा, यो भी एक ऐसे कर्म निर्धारित कराखे उस निर्धन के आत्मा से यो सारा सौदा, उसका कानून गरकाड़े कुछ भी बनावे कि भाई 84 भी एक बार जरूर काटनी पड़ेगी और फिर मनो शरीर बनेगा, अब बंदी छोड़कर इसे बुंडे को क्रम में ऋषि भगवान मान रहे तुम ज्योत निरंजन को, कबीर साहब कहते हैं जो यम को करता भाक है और तज सुधा यम विस्के चाक है, जो इस काल निरंजन ने ज्योत निरंजन ने भी भगवान मानते हैं वो तो अमृत छोड़कर जहर खा रहे, ये प्रमाण दिया कबीर साहब ने और गरीबदास जी ने, ये खोखा पर झूठी बाजी बिस्त पे कुंड दगासी साजी, कृत्रिम जीव बुलाने भाई निज घर की तो खबर ना पाई, अपना निज घर है सतलोक जहां पर आप जावेंगे आप एक सुंदर शरीर होगा, फिर मरे को नहीं। अब यहां कोई मरना नहीं चाहता और सब न मरना, एक के दोनों हाथ कट रहे और वो भी पैरों तक काम ले रोटी खान कर सारा, वो भी मरना नहीं चाहता। एक कोड लाग रहा तड़फ है, एक हाथ भी कोई ना, वो भी नो जीवन की आस है। ऐसी क्यों हमारे साथ है भाई? क्योंकि हम ऐसे लोग से आए हैं जहां जीव मरते को ना, और वह कसकब भी है हमारे अंदर। ये ज्ञान होते हुए कि हम मरना है फिर भी मरना नहीं चाहते, क्योंकि हम ऐसे लोक में गणेदन रह रहे हैं कि वहां प्राणी मरते को ना, वहां पर सुंदर शरीर मिलता है, तेज पुंज का शरीर होता है, इसलिए हम नहीं मरना चाहते। लेकिन यहां तो मरे पांडा छूटेगा, छूटे भी कोई ना, फिर लंबा गेड़ा। कृत्रिम जीव हमारा ये स्वरूप नहीं है। आज मनुष्य कल गधे बना देगा, वो कृत्रिम बनावटी हो गए। कृत्रिम जीव बुलाने भाई, निज घर की तो खबर ना पाई, सवा लाख उपजनित हंसा, सवा लाख उपजनित हंसा और एक लाख विनसैनित अंसा। एक लाख रोज खावे, सवा लाख पैदा करे। अब ये और समस्या क्यों बुद्धि हमारी इतनी मोटी हो रही है या समझ में नहीं आती? नो कहेंगे खावे क्या न, शरीर तो यहां रह गया बता, और जीव अमर बताते हैं, ये भी नहीं जच रही बात। एक भाई प्रश्न किया हमारे से, उन्हीं के उत्तर बताता हूं। अब ये खोखा है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कवल्य शरीर, महाकारण शरीर, और फिर जीवात्मा बंद कर रखी वो आत्मा, और इसका जीव बनाया। उस सूक्ष्म शरीर को इसमें अपनी कारीगरी ते मां के पेट में हमारा शरीर बनवाया, और इसके द्वारा गंदे से गंदे व्यसन निरंजन करता है ये मन रूप में। इसने चटपटी तो सब्जी चाहिए और दारू और मुर्गा खावे और बीड़ी पीवे, सुल्फा खेचे और गंदी दृष्टि रखे, व्यसन करे, विलास करे, और उसके द्वारा जो वासना होती है उस वासना को इस सपन शरीर द्वारा और सूक्ष्म शरीर के ऊपर लेप कर ले है, और ये शरीर तो खोखा अमरवा इसने तो भाईवान मर जाता है, और उस सूक्ष्म शरीर में ले जाकर एक लाख जीवों को तपस्या के ऊपर गर्म करे, इतना गर्म करता है कि वो प्राणी बेहोश हो जाते हैं वहां पे, एक लाख प्राणी, और फिर उनके ऊपर जो जमी हुई वह गंदी वासना और बहुत बारीक होती है, मैक जिसने कहे, और इतनी गर्म करता है कि तो मरता नहीं जीव, अमर तो जरूर है पर गधा बन गया, कुत्ता बन गया, वहां दुख पा रहा है के अमर होया फिर यो। तो वो वासना जब निकल जाती है ऑटोमेटिक ऐसा ऐसी झटका देता है सिद्धि से, और सब जीव ब्रह्मंडमा के होते हुए ठंडे हो जाते हैं, और उन जब सो दिया जब लाइन में खड़े होते हैं धर्मराज का आगे लेखा जोखा कराने के लिए। एक भगत के सिर में चोट लगी, एड इंजरी होगी, एक महीने में सो दिमाई, उसने जो बिना बेरात्र गलके होया था, उन्होंने बताया कि तू ऐसे ऐसे बस में जा था, स्कूटर पर था, बस गेला टक्कर हो गई थी तेरी और तेरा सिर फूट गया था। उसने फिर हाथ ला के देखा, टाके टूके लाए जो रब मेरे तो कुछ भी याद कर। इसी प्रकार जब तपस्या पे इसको इतना गर्म कर दे, इसने न्योना बेरा में पाछा के था, हमें किसी को याद नहीं, हम क्या थे और कहां जाएंगे, ये सारा खेल इस काल भगवान निरंजन का है। अब पुराण में आप सुन रहे थे उस काल में प्रेरणा दी विष्णु के एक सृष्टि रच, मानते हैं सारे शास्त्र काल है, पर काल का ना बेरा, और गीता जी में स्वयं वो निरंजन उस कृष्ण जी में प्रवेश होकर अपना रूप भी दिखावा है, फिर बिना समझ में आई और कहता मैं महाकाल हूं और सब न खाऊंगा। गीताजी साहब कह नागरिक अर्जुन डर गया, फिर कल आपको गीता जी भी सुनाएंगे। सवा लाख उपजे नित हंसा, एक लाख विनसे नित अंसा, उत्पत्ति खपती या प्रलय फेरी, हर्ष शोक जोरा जमजेरी, पांचों तत्व है प्रलय माही, सतगुण रजगुण तमगुण झाई, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमगुण शिव, ये भी नौके प्रलय में से, पांचों तत्व भी और तीनों गुण भी नाशवान से, ये भी नष्ट होंगे, और यही गीता जी में कल सुनाऊंगा आपने, उसमें भी ये कह रखा है कि ये रजगुण तमगुण सदगुण सब नाश में हो जाएंगे, नाश होंगे। आठों अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड ये सकल भरमाया, या मैं सुरत शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। इसमें तो भाई सुरत और शब्द और सतनाम, सतनाम का ऊपर या सुरत और शब्द यानी अपहारा उस शब्द से संपर्क हो है। सार नाम थे सार शब्द से, तो तब पीछा छूटे ना, और कोई रास्ता नहीं यहां से बचने का। श्वासा पारस मन गए राखो, खोल कपाट अमीर चाख, एक श्वास